इसके बाद आप देखिए कि 2 महीने गुजरे थे कि रबीउल अव्वल 6 हिजरी में रजी के शोहदा का बदला लेने के लिए 200 सहाबा की एक जमात को अपने बनू लहयान पर चढ़ाई के लिए भेजा और इस गजवे को बनू लहयान कहते हैं, गजवे बनू लहयान। फिर इसके एक माह बाद रबीउल सानी 6 हिजरी में सरिया गमर पेश आया, एक लश्कर भेजा। उसी महीने रबीउल सानी 6 हिजरी में सरिया जुल्किस्सा इरसाल फरमाया। मुझे ऐसे लग रहा है कि हर किस्सा और हर गजवा जो है ना, ये एक कोर्स है। अभी एक कोर्स शुरू हुआ, इसी माह दूसरा शुरू, दूसरी जगह दूसरा, तीसरी जगह तीसरा, कोई एक माह बाद, कोई 6 माह बाद। हम तो डरने लगते हैं, कहते नहीं टू मच, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। नहीं, अल्लाह उतने हाथ और ले आता है आगे काम करने के लिए। नीयत अच्छी रखें, अल्लाह की मदद आती है। फिर इसके बाद इसी माह रबीउल सानी 6 हिजरी में सरिया जमूम रवाना हुआ। एक माह बाद जमादिउल अव्वल 6 हिजरी में सरिया ऐस रवाना हुआ। फिर एक माह बाद जमादिउल सानी 6 हिजरी में सरिया तुर्क। फिर इसके एक माह बाद रजब 6 हिजरी में सरिया वादिउल कुरा। एक माह बाद शाबान 6 हिजरी में गजवा बनू मुस्तलक पेश आया। और इन कैदियों में हज़रत जुवैरिया आईं, जो साबित बिन कैस के हिस्से में आईं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने दी और वो रकम नबी सल्लम ने अदा की और हज़रत जुवैरिया से शादी की। फिर गजवे बनू मुस्तलक में हज़रत आयशा पर तोहमत लगने का वाक़ भी आया कि कैसे मुनाफिकों ने अल्लाह के नबी की बीवी पर जिना की तोहमत लगाई और सफ़ान बिन मुअत्तल के साथ उनको मनसूब किया। अल्लाह ताला ने अपने नबी को किस गम में नहीं रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अपने नबी पर वो रहमतें और दुरूद भेजे कि जो हकीकत में इतने सदमों में दो चार थे और इतनी मुख्तलिफ जंगें, इतने हालात ख़राब। जहन में क्या था, बड़ा कोई दुखी इंसान होगा, रोता धोता, हालांकि बड़े स्माइली थे, फ्रेश रहते थे। सूरत नूर में 10 आयतें नाजिल हो गईं हज़रत आयशा की बेगुनाही पर। पता चल गया कि ये अब्दुल्ला बिन उबई के जहन का एक फितना था जिसमें कई मुसलमान भी शामिल हो गए सिर्फ बातों ही बातों में। फिर इसके बाद इसी माह में शाबान 6 हिजरी में अब्दुर्रहमान बिन औफ की क्यादत में सरिया दियार बनी कल्ब रवाना हुआ। इसी माह शाबान 6 हिजरी में हज़रत अली की क्यादत में सरिया दियार बनी सात रवाना हुआ। एक माह बाद रमज़ान में 6 हिजरी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक की क्यादत में सरिया वादिउल कुरा रवाना हुआ। इसके एक माह बाद शवाल 6 हिजरी में कुर्स बिन जाबिर फहरी की क्यादत में सरिया उरैनैन हुआ। सुनते सुनते आप थक चुके होंगे, लेकिन सोचिए कि जो लोग ये लड़ते थे जंगे, उनका क्या हाल होता था। हमें तो ये बड़ा आसान लगता है ना पढ़ना, वो तो लड़ते थे। इतना काम हमें दीन के लिए करना पड़े तो हमारे तो आंसू ही नहीं रुकते। कहते मेरी तो अब कोई ज़ाती ज़िंदगी नहीं रह गई, मैं क्या करूँगी, मैंने क्या घर बनाना है, मैंने क्या खाना पकाना है। और मर्द हो तो क्या, हमने क्या कमाना है जी, हम पहले जंगे तो लड़ लें। लेकिन देखिए दीन के रास्ते मुश्किल होते हैं। आज मुसलमान कितनी आसानी से जन्नत चाहता है, सारी नाफरमानियाँ ज़िंदगी में है, बस रबीउल अव्वल का महीना आएगा, बैठेंगे और अल्लाह के नबी की तारीफ़ करेंगे और ख़त्म। चलो कोई नहीं, हर महीने एक दफ़ा कर लेंगे, लेकिन अमली ज़िंदगी में आज हम उन कुर्बानियों से कितने दूर दिखते हैं, इल्ला माशाल्लाह। और इसके बाद सन 6 हिजरी ज़िलक़ादा के महीने में गज़वा हुदैबिया पेश आया। बड़ा रिक्कत तमीज़ वाक़ छः साल हो चुके थे मुसलमानों को मक्का से निकाले गए। कितना प्यार था मक्का से। अल्लाह के नबी को ख्वाब में दिखाया गया कि आप उम्रा फरमा रहे हैं। नबी का ख्वाब हुज्जत होता है। अगले दिन आपने कहा कि लोगों हम उम्रा करेंगे, तैयारी करो। 1400 सहाबा कराम यूँ तैयार हो गए कि हम जाएंगे, क्यों ना जाएं। आपको 6 साल हो चुके हैं पाकिस्तान छोड़े हुए, तो कोई आपसे कहे कि चलो पाकिस्तान चलते हैं तो आप तो फ़ौरन तैयार हो जाएंगी ना। यही कैफियत थी। बिल्कुल उम्रे की नीयत करते हुए बग़ैर किसी हथियार के मुसलमान मक्का के करीब पहुँचे। ज़ुल्खुलैफ़ा पे हराम भी बांध लिया, कुर्बानी के जानवर साथ थे, एक एक तलवार साथ रखी हुई थी जो सफ़र के रास्ते में किसी जानवर या ख़तरे से बचने के लिए होती थी। लेकिन मक्का वालों ने मुसलमानों को रोक दिया। हुदैबिया के मौकाम पर एक ऐसी सुलह हुई जिसको आप वन साइडेड सुलह कहेंगे। सारी मुसलमानों के खिलाफ बातें और कुफार के सहक में, और अल्लाह के नबी मान गए। उसकी शिकों में क्या थी कि मुसलमान इस साल उमरा किए बगैर वापस जाएंगे और अगले साल तलवारें बंद करके आएंगे और सिर्फ 3 दिन के लिए मक्का में रुकेंगे और वापस जाएंगे। फिर दूसरी शर्त कहती कि 10 साल तक दोनों फरीकों में जंग नहीं होगी। और इसी तरह हर शख्स यानी कबीले को मुसलमानों के साथ या कुरैश के साथ वादा करने रहने की सहूलत हासिल होगी, जो जिसके साथ जल्दी मिल जाए। और एक बड़ी जबरदस्त शर्त थी जो मुसलमानों के खिलाफ पड़ती थी कि कुरैश मक्का का जो शख्स अपने सरपरस्त की इजाजत के बगैर मदीना जाए, इसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस करेंगे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में जो शख्स भाग कर मक्का आए, उसे वापस नहीं किया जाएगा। कैसी लग रही है ये शरारत? लेकिन आप मान गए, क्योंकि अल्लाह के नबी बहुत प्यारे जरनेल भी थे, दूरंदेश थे, और इसी फतह के बाद फिर फतह मक्का हुई थी। इसी शर्तों को पूरा न कर सकने पे कब मक्का वालों ने वादा तोड़ा और अल्लाह के नबी ने अल्लाह के हुक्म से हमला किया। जंग न करने की शरायत से फ़ायदा उठाते हुए आपने दावती ख़त भेजे, हबशा के बादशाह को ख़त भेजा अमर बिन उमैया ज़मरी के हाथ, और उसने इस्लाम कबूल कर लिया, और जो लोग वहाँ हिजरत करके आए हुए थे उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। फिर ये शख्स जब फौत हुआ तो नबी सल्लम ने इसकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। फिर इसी तरह शाह मिस्र के पास आपने हातिब बिन अबी बलता को भेजा और उसने मकोकस को इस्लाम की दावत दी। ईमान तो न लाया लेकिन आपके कासिद की उसने इज्जत बड़ी की। एक खच्चर और दो लौंडियाँ तोहफे में आपको भेजी, और एक लौंडी मारिया को नबी सल्लम ने अपने पास रखा, जिनसे फिर हज़रत इब्राहिम अलै पैदा हुए जो आपके बेटे थे, और दूसरी लौंडी सीरी हज़रत हसन बिन साबित को दी। इसी तरह ईरान के बादशाह को ख़त भेजा अब्दुल्ला बिन खुजाफा के साथ हाथ में, खुसरो उसका नाम था, उसने तकबर से ख़त फाड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह इसकी हुकूमत को तबाह करेगा। परवेज ने गवर्नर यमन को ख़त लिखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे पास गिरफ़्तार करके भेजो, और यमन का गवर्नर जिसका नाम बाजान था उसने दो लोग भेजे कि जाओ मोहम्मद को गिरफ़्तार करके लाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों आपके पास पहुँचे, आपने फरमाया कल आना। दूसरे दिन जब दोनों आए तो आपने फरमाया परवेज तो कत्ल हो चुका है, क्योंकि उसका बेटा शेरवा उसने खुद अपने बाप को कत्ल करके तख्त पे बैठ चुका है। उन्होंने जब यह खबर सच पाई तो मुसलमान हो गए। अल्लाह कैसे लाता, ये कैद करने आए थे, खुद कैदी बन गए। फिर इसी तरह रोम के बादशाह को दाहिया कल्बी के ज़रिए आपने ख़त भेजा, हिरकल कहते थे उस दौर के बादशाहों को जो रोम में थे, उसने आपके ख़त को पढ़ा, बैतुल मक़दस में था और काफ़िला अबू सुफियान की सरकर्दगी में तिजारत के लिए वहाँ जा चुका था। उनसे बातचीत हुई और मान गया कि ये शख्स सच्चा। बहुत इज्जत की तोहफे भेजे लेकिन अपनी हुकूमत के जाने के डर से इस्लाम कबूल नहीं किया। ऐसे भी आपको वाक़यात दिखेंगे, सबको पता लगता है ये इस्लाम सच्चा लेकिन कहते हैं नहीं, फिर हमारी चौधराहट चली जाएगी। बहरहाल फिर शाह बहरीन के पास आपने आला बिन खजरमी को भेजा, और उन वो ख़ुद भी मुसलमान हुआ और आप उसके लोग भी बहुत सारे मुसलमान हुए। फिर यमामा के बादशाह की तरफ आपने सुलैत बिन अमर को भेजा और उसने कासिद की इज्जत की लेकिन ईमान न लाया। फिर दमिश्क के बादशाह को ख़त भेजा शुजा बिन वाहब के हाथ, और इस शख्स ने तकबर किया और ईमान न लाया। एक ही बात होती है, कोई मानता कोई नहीं मानता। फिर उम्मान के बादशाह को ख़त भेजा अमर बिन अलास के हाथों, दोनों ने गौर व फिक्र किया, उसने और उसके भाई ने, और ईमान ले आए। आज हमने कितने गैर मुस्लिम बादशाहों को ख़त भेजे, आज कितने मुस्लिम मुल्क हैं, उनके बादशाहों की जिम्मेदारी है कि वो दूसरे नॉन मुस्लिम बादशाहों को इस्लाम की दावत दें। शुक्र हम बादशाह नहीं है, ना वज़ीर है, ना सदर है, ना हम पे ये जिम्मेदारी है। ज़रूरत इस बात की है कि हम जितना ज़्यादा इस पे गौर करेंगे, जितना हम अल्लाह ताला ने हमें दिया उसका हक अदा करते जाएं, तो उसी पे बच जाएं तो बहुत बड़ी बात है। बहरहाल अब आप देखिए कि इन सारे खतूत के बाद, फतह सुलह हुदैबिया के बाद, दो माह बाद मुहर्रम 7 हिजरी में ग़ज़वा गाबा पेश आया, मुसलमान कामयाब हुए। इसी माह मुहर्रम 7 हिजरी में आप खैबर के लिए गए। इस्लामी लश्कर की तादाद 1400 थी। इस जंग में सिर्फ उन सहाबा को लड़ने की इजाज़त मिली जिन्होंने हुदैबिया के मुकाम पर बैतर रिजवान की अजीम सआदत हासिल की थी, और खैबर के 8 किले थे और वो मुसलमान सब मुसलमानों को मिल गए। हज़रत अली ने इसमें बहुत ज़्यादा बहादुरी के जौहर दिखाए, कुछ और सहाबा ने भी, और इसमें हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों को मिली, और अल्लाह के नबी ने फिर इनसे निकाह किया था। बहुत बड़ी मुसलमानों के लिए ये जीत थी। खैबर में भी मुसलमानों को फतह मिली तो पता चल गया लोगों को कि इस्लाम कायम रहने वाली चीज़ है। फिर इसके एक माह बाद सफ़र 7 हिजरी में सरिया रबान बिन सईद रवाना हुआ। फिर इसके एक माह बाद रबी अव्वल 7 हिजरी में ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा पेश आया। 400 या 600 सहाबा के साथ नबी सल्लम सरकश कबाइल के लिए की तरफ गए। फिर इसके एक माह बाद रबी अव्वल 7 हिजरी में हज़रत अब्दुल्ला की कमान में सरिया कदीद रवाना हुआ। تین ماہ بعد جمادی الثانی 7 ہجری میں حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں ایک رہزن قبیلے سے معاملہ ہوا، لٹیرے تھے یہ لوگ، تو اللہ کے نبی نے اس طرح کرپشن کا خاتمہ کیا کہ ایسے لوگوں کو سرنڈر کرو۔ پھر 2 ماہ بعد شعبان 7 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب کی قیادت میں ایک سریہ بنو خوازن کی طرف گیا۔ اسی ماہ شعبان 7 ہجری میں بشیر بن سعد انصاری کی قیادت میں ایک سریہ گیا۔ پھر 1 ماہ بعد رمضان 7 ہجری میں غالب بن عبداللہ کی کمان میں ایک سریہ گیا۔ پھر اس کے 1 ماہ بعد شوال 7 ہجری میں عبداللہ بن رواحہ کی قیادت میں بنو غطفان کے قریب گیا، قبیلہ ایک یعنی بنو غطفان سے معاملہ ہوا۔ پھر اسی ماہ شوال 7 ہجری میں بشیر بن کعب انصاری کو مدینہ پر حملہ آور ہونے والے بعض قبائل کی طرف بھیجا گیا۔ پھر 1 ماہ بعد ذوالقعدہ 7 ہجری میں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ قضاء کا سفر ہوا۔ اس سفر میں آپ نے حضرت میمونہ بنت حارث سے نکاح کیا۔ پچھلے سال جو منع کیا گیا تھا حج عمرہ کرنے سے، یہ اگلے سال کیا۔ مسلمان کے 3 دن تک رہے وہاں بڑے امن سے، کوئی تلوار نہیں دی اٹھائی، حالانکہ موقع تھا کہ مکہ پہ قبضہ کر لیں، لیکن مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہیں، شر پسند نہیں ہیں، اور اللہ کے نبی وعدہ کر کے توڑتے بھی نہیں تھے، غدر بھی نہیں کرتے تھے، اور لہٰذا آپ نے صرف خود وہاں عمرہ کیا اور واپس آ گئے۔ پھر 1 ماہ ہی گزرا ذوالحجہ 7 ہجری میں، تو بنو ابو الاوجا کی سرکردگی، ایک صحابی تھے حضرت ابو الاوجا، ان کی سرکردگی میں قبیلہ بنو سلیم کی طرف سریہ بھیجا۔ پھر 2 ماہ بعد صفر 8 ہجری میں سریہ غالب بن عبداللہ بھیجا۔ 1 ماہ بعد ربیع الاول 8 ہجری میں کعب بن عمیر کی قیادت میں سریہ ذات اطلق ہوا۔ شاید آپ نے تو یہ نام بھی نہیں کبھی سنے ہوں گے اگر ڈیٹیل سے سیرت نہیں پڑھی۔ یہاں روک کے تھوڑا سا خود سے اور آپ سے پوچھوں، کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پوری کہانی پڑھ چکی ہوں؟ کیا میں نے کبھی سیرت پڑھی؟ مجھے پتہ ہے اللہ کے نبی کی زندگی کے مختلف واقعات کب اور کہاں ہوئے۔ یہ سوال میرا آپ سے، میرا اپنے آپ سے اور آپ کا اپنے آپ سے ہونا چاہیے۔ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ نیت کر لیجئے، اس ربیع الاول کو رنگ لگائیے کہ آج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھوں گی۔ کوئی مستند کتاب پڑھ لیجئے، بہت ساری مل جائیں گی آپ کو۔ رحیق المختوم بہت خوبصورت کتاب ہے، آسان بھی ہے، ہسٹوریکل بھی ہے۔ انگلش میں سیلڈ نیکٹر کے نام پہ بھی ملتی ہے اور اردو میں۔ اسی بک کو بچوں کے لیے وین دا مون سپلٹ کی صورت میں، مختصر کہانیوں کی صورت میں بھی کیا گیا۔ اپنے بچوں کے ساتھ روز سیرت کی ایک کہانی پڑھیے، انشاءاللہ آپ کے بچے اللہ کے نبی کے قریب ہوں گے۔ پھر آپ جب ان کو عمرے کے لیے لے جائیں، حج پہ لے جائیں، تو آپ محبت محسوس کریں گے۔ آپ کو بھی اللہ موقع دے عمرے پہ اور حج پہ جانے کا۔ 7 سفر میں ایک کتاب رکھیے، مکہ میں مکی دور پڑھیں، مدینہ میں جا کے مدنی دور پڑھیں۔ اس مسجد نبی میں جا کے آپ کو یقین نہیں آئے گا، یہ وہی مسجد ہے جو اللہ کے نبی نے 300 اسکوئر فٹ پہ بنائی تھی، اور آج پورا شہر اس کے اندر آباد ہے۔ اخلاص والے کام ایسے ہی ہوتے ہیں، اور اللہ ہمیں ان کی توفیق دے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ماہ بعد صفر 8 ہجری میں سریہ غالب بن عبداللہ بھیجا۔ 1 ماہ بعد ربیع الاول 8 ہجری میں کعب بن عمیر کی قیادت میں ذریعہ ذات اطلق ہوا۔ پھر ربیع الاول میں شجاع بن واہب میں سریہ ذات ارق ہوا۔ پھر اس کے بعد 2 ماہ گزرے، تو جمادی الاول 8 ہجری میں اپنے قاصد کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے زید بن حارثہ کی قیادت میں 3000 کا لشکر موتا کی طرف بھیجا۔ اس کی ڈیٹیل ضرور پڑھیے گا سیرت میں، آنسوؤں سے تر ہو جاتی آنکھیں جب ہم غزوہ موتا کو پڑھتے ہیں۔ 2 لاکھ رومی فوج وہاں موجود تھی کفار کی طرف سے، اور حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ باری باری شہید ہو گئے، اور خالد بن ولید کی قیادت میں اللہ نے مسلمانوں کو سرخرو کیا۔ انشاءاللہ میری نیت ہے کہ اس جنگ کو اور غزوہ یرموک کو الگ سے ایک نشست میں آپ کو پڑھاؤں گی، پتہ تو چلے کہ ہم کن کی نسل میں سے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1 ماہ گزرا جمادی الثانی 8 ہجری میں بدوی قبائل کے مدینہ پر حملہ آور ہونے کی خبر ملی، تو عمر بن عاص کی سرکردگی میں آپ نے ایک لشکر بھیجا۔ پھر 2 ماہ بعد شعبان 8 ہجری میں حضرت ابو قتادہ کی قیادت میں سریہ خزرا بھیجا۔ 1 ماہ بعد رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہو رہا ہے۔ اب آئے ہیں ہم مکہ پہ۔ آپ کو پتہ ہے ابھی تک کتنے غزوات ہو چکے ہیں؟ غزوات جسرایا، یعنی چھوٹی بڑی 62 جنگیں، 62، اور اگر ہم ساری دیکھیں نا تو 74 بنتی ہیں، جو اللہ کے نبی کی زندگی میں خود گئے یا نہ گئے آرگنائز کرنا بھی تو بڑی بات ہوتی ہے نا۔ آپ کا ذہن کتنی چیزوں میں الجھا رہتا ہوگا ہر وقت، ادھر گئے تھے، ادھر کیا ہوا، وہاں کی خبر نہیں آئی، ادھر کیا ہو رہا ہے، ایک وقت میں ایک جنگ ادھر ہو رہی ہے، ایک ادھر جا رہی ہے، ایسے لگتا تھا دشمنوں کو کوئی چیز کھا گئی ہے۔ वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मुसलमानों को हम ख़त्म करें, किसी तरह से ये अपनी जगह से जाएं और छुटें। हर वक्त जंगे सरों पे मुसल्लत की जा रही हैं, और अल्लाह के नबी की ये बेदार मख्जी थी आपके खूबसूरत जरनैल होने की अलामत थी कि आप इन सारी चीज़ों को बड़े आसान तरीके से कर रहे थे। मैं सारा सुनते और पढ़ते हुए सोच रही हूँ कि अल्लाह के नबी कितने मल्टीटास्किंग थे। हम तो एक काम कर रहे हैं तो कहते हैं नहीं पहले दूसरा, नहीं घर का काम कर लें तो हम पढ़ने का नहीं कर सकते, कमाना पड़े मर्दों को तो वो बाज़ दफ़ा घर की खरीदारी तक नहीं करते, ग्रोसरियाँ बेचारी बीवियाँ लेके आ रही हैं, बच्चों को छोड़ रही हैं, ला रही हैं। लेकिन अल्लाह के नबी का जहन कितना खूबसूरत था, एक वक्त में सारे काम, और देखिए नौ घराने, उनको भी खुश रखना, बीवियाँ काम करने, मस्जिद नबी, फिर 5 वक्त की नमाजें यहाँ पढ़ाते थे मस्जिद में। सुबहान अल्लाह, इतना मसरूफ इंसान और फिर इतना रिलैक्स, इतना फ्रेश, खुशबाश दिखे। हम तो सटपटाए फिरते हैं किसी एक काम के करने के बाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें अपने नबी की सुन्नतों पे चलाए, उन जैसा किरदार हमारा बने, वो हौसला बने, और वो काम अल्लाह हमसे बड़े बड़े करा ले इस छोटी सी जिंदगी में, कि सिर्फ 8 साल के बाद वही मक्का जहाँ से निकाला गया, जहाँ कत्ल की बातें थी, वहाँ आप फातह बन के जा रहे हैं। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। अबू कतादा की सरकर्दगी में मदीना मुनव्वरा से 36 मील के फासले पर एक मुकाम है, सरिया बतन असनम हुआ, वहाँ मुसलमान नबी सल्लम के साथ बैतुल्ला में पहुँचे, बुतों से पाक किया, नमाज पढ़ी, वहाँ सबको माफ़ कर दिया। ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज किसी की कोई पकड़ नहीं है। हम अपने दुश्मनों को कितना माफ़ करते हैं, हम तो अपनों को नहीं करते, सगे भाई बहनों को नहीं हम माफ़ करते। सच्ची जो बात है, कोई रिश्ता लेके छोड़ दे हम कहते हैं अब ज़िंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी, हमारी बेटी कहीं से पलटाई जाए तो हम कहते हैं अब बस हो, बहुत हो गया, रिश्ते ख़त्म। हम तो अपनों को नहीं माफ़ करते, अल्लाह के नबी दुश्मनों को माफ़ करें। कहाँ है आज ये सुन्नत हमारी ज़िंदगी में? मीठी मीठी सुन्नतों की बातें तो हम बहुत करते हैं, हलवा खाते हैं अल्लाह के नबी का नाम लेकर, सोचने की बात है ना, लेकिन हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में ये माफियां क्यों नहीं करते? फिर 8 हिजरी में रमज़ान में खालिद बिन वलीद की सरकर्दगी में उज्जा नामी बुत को गिराने के लिए एक सरिया भेजा, 8 हिजरी में अमर बिन आस को सवा नाम का एक बुत तोड़ने के लिए भेजा, फिर इसी माह में 8 हिजरी में मक्का मुकरमा में साद बिन जैद की क्यादत में मनात नामी बुत को गिराने के लिए एक सरिया भेजा, चंद दिन के बाद शवाल 8 हिजरी में मक्का मुकरमा से हज़रत खालिद बिन वलीद की क्यादत में बनु जुज़ैमा को इस्लाम की दावत देने की कोशिश की, चंद दिन के बाद शवाल 8 हिजरी में गज़वे हुनैन के लिए रवाना हुए। इब्तदा में भगदड़ मची, लेकिन चूँ ही नबी सल्लम ने लब पुकारा तो सब जमा हो गए, और इस तरह दुश्मनों को शिकस्त हुई। मुसलमानों को 6,000 कैदी मिले उस जंग में, 24,000 ऊँट, 40,000 बकरियाँ, 600 किलोग्राम चांदी मुसलमानों को मिली। गज़वे ताइफ से वापसी पर आपने माले गनीमत बांट दिया सबके हाथों में। गज़वे हुनैन के बाद फिर वादी नखला की तरफ एक दस्ता गया, कहती जाऊंगी लंबी बात होती जाएगी, लेकिन अल्लाह के नबी की ज़िंदगी चैलेंजिंग से भरी, चैलेंजेस थे बहुत सारे। मुहर्रम 9 हिजरी में उयाना बिन हसन की क्यादत में सरिया बनु तमीम हुआ, सफ़र 9 हिजरी में कुतबा बिन आमिर की सरकर्दगी में एक सरिया हुआ, रबी अव्वल 9 हिजरी में दहाक बिन सुफियान की क्यादत में इस्लाम की तबलीग के लिए एक सरिया भेजा, इसी तरह रबी अव्वल 9 हिजरी में हज़रत अली की कमान में कबीला तय का बुत गिराया, और एक माह बाद रबी उस्सानी 9 हिजरी में हज़रत अलकमा की सरकर्दगी में जद्दा के साहिल पर मौजूद कुछ डाकुओं से ना मामला हुआ, और आखिरी जंग नबी सल्लम की ज़िंदगी की। 3 माह बाद रजब 9 हिजरी में गज़वे तबुक पेश आया। आज इसको पढ़ने का वक्त नहीं है हमारे पास, बस ये कह लीजिए कि सिर्फ गज़वे तबूक को पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद नबी सल्लम के मिशन से प्यार होगा। कैसे मुसलमानों ने इस जंग में अपने आप को पेश किया, 30,000 सहाबा थे और उधर लाखों के एतबार में दुश्मन खड़े हैं, पैदल गए, खड़ी फसलें तैयार थी, पाँव पे पट्टियाँ बांधी और मुसलमानों ने जंगें लड़ी। तो अजीज साथियों, हमारे पास तो इतना वक्त भी नहीं है कि हम इन जंगों का अहाता कर सकें, तो हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत के दावे करें, अल्लाह हमें ये दावे मुबारक करें, लेकिन याद रखिए कि हमें अल्लाह के नबी के मिशन से भी प्यार करना है। हमारे नबी हमें एक बहुत बड़ा मकसद दे कर गए कि गेट मोर फ्रॉम लाइफ, ज़िंदगी से और हासिल करो, वक्त बहुत थोड़ा है, काम ज़्यादा करो। मैं सब सुनने वालों को ये दावत दूँगी, कि जब किसी से प्यार होता है ना तो उसके दिए हुए तोहफे की बड़ी कदर होती है। तो आइए हम भी आज नियत करते हैं कि अल्लाह के नबी के तोहफे को कबूल करना है। और आपका तोहफा कुरान और सुन्नत था, हदीस थी। अगर आज तक हमने कुरान नहीं समझा, समझने की कोशिश करते हैं, नहीं पढ़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में कितना सुकून आता है। जिस तरह आज हम बैठे हैं, क्या हम हर रोज़ नहीं बैठ सकते? खुद से पूछिए। बहुत लच्छेदार बातें भी हो सकती थी, शायद आपको मुश्किल लगी हों बातें, तो दिल में अल्लाह ना करें। आम लेक्चर जो होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि इस मुख्तसर से वक्त में हम नबी सल्लम की ज़िंदगी को तो, और सिर्फ मदनी दौर की कुछ झलकियाँ, जंगों की देख के हम हैरान हो जाते हैं कि आप कितना काम करते थे। तो आप सब सोचिए, अगर हकीकत में आप सोचते हैं कि आप इससे फ़ायदा लेना चाहते हैं, बात सिर्फ यही है कि हम कुछ करें। ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। मुसलमानों को अल्लाह के नबी का मिजाज समझ आता है। किस तरीके से आप दुश्मनों की आंखों में आंखें डालते थे। एक एक जंग अपने अंदर सबक रखती है। सीरत की गलियों में सफ़र करके तो हकीकत में अपनी ज़िंदगी पे शर्म आती है। हमें तो खाने की फ़िक्र, शादी की फ़िक्र, मंगनी की, वहाँ क्या पहनेंगे, चूड़ियाँ नहीं है, मेहंदी नहीं है, फूल नहीं है, हम क्या इन्हीं चीज़ों में नहीं खो के रह गए? मैचिंग कुशन नहीं है, खाना नहीं है, सीरियल नहीं है, दूध नहीं है, बटर नहीं है, हर वक्त यही बातें नहीं होती? कोई नस्बत लगती है नबी से हमारी? क्या हम वही हैं जिनको कल आप इतना बड़ा मिशन देकर गए थे? हज्जतुलविदा के मौके पे आपने क्या कहा था कि लोगों, जिसने आज सुन लिया वो अब उनको बताए जिन्होंने नहीं सुना। किस तरह अल्लाह के नबी ने इस दीन को भेजा। तबुक के बाद जब ज़ीकात 9 हिजरी आया तो अबू बकर सिद्दीक की इमारत में 300 सहाबा को हज के लिए भेजा, और वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला और आखिरी, सन 10 हिजरी में आपने अपना आखिरी और पहला हज किया, जिसको हज्जतुलविदा कहते हैं। तो आइए आज हम भी नियत करते हैं, हमने नबी के इस वरसे को लेना है। इल्म के बगैर बात नहीं बनेगी। माएँ सुनती हैं तो बच्चे भी सुनेंगे, हम खुद कुरान सीखेंगे तो बच्चों को भी सिखाएंगे। इंशाल्लाह आपको लफ्ज़ लफ्ज़ कुरान सिखाते हैं, उसकी अरबी सिखाते हैं, उसकी तजवीद सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं। कोशिश कीजिए कुरान के 5 हक जो हर एक से पूछे जाएंगे उनका हक अदा करना इंशाल्लाह। उस पर ईमान कितना है, हम उसको पढ़ सकते हैं कि नहीं, हम खुद से पूछें, क्या मेरा किताब पर ईमान है? इंशाल्लाह होगा। क्या मैं इसको ठीक पढ़ती हूँ? इसका फ़ैसला किसी भी अच्छे अरब टीचर को सुना लें, वो आपको मुझे बता देगा कि हम कैसे पढ़ते हैं, अरबी में पढ़ते हैं कि उर्दू में कुरान पढ़ रहे हैं। क्या मैं इसका तर्जमा समझती हूँ, इसके मानी मफहूम समझ आते हैं? क्या इस किताब के अंदर जो बातें सुनती हूँ फिर उस पर अमल करती हूँ, और फिर पर सुनने के बाद क्या इसको दूसरों तक पहुँचाती हूँ? ये हैं वो 5 हक जो क़्यामत के दिन ये किताब हमसे मांगेगी। तो अगर हमने ये हक अदा ना किए तो कल क़यामत के दिन हो सकता है कि नबी सल्लम हमारी सिफारिश करने की बजाय हमारी शिकायत कर रहे हो। सूरह फुरकान में भी आता है, क़यामत का दिन होगा और नबी शिकायत लगा रहा होगा कि अल्लाह ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान को छोड़ा हुआ था। हम सादा कुरान भी पढ़ लेते हैं लेकिन समझ कितना आता है। हम सादा कुरान पढ़ते हैं लेकिन हमारे जहन में उसका कोई अक्स क्यों नहीं बैठता? ये सब सवालात करते हुए सुनते हुए उठिए, और फिर उसके बाद आप लोग सोचिए कि हमें क्या करना है। आखिर में अल्लाह के नबी की वफ़ात की बात आती है, बल्कि आप तो दुनिया से जाते हुए भी हज़रत उसामा बिन ज़ैद को एक सरिये का लीडर बना के जा रहे हैं, अमीर लश्कर बनाए के जाओ फ़लस्तीन की तरफ। 29 सफ़र 11 हिजरी को अल्लाह के नबी की मरज़ुल मौत का आगाज़ हुआ, और इसी दौरान जंग चली। वो चले गए सहाबा, हम होते कहते नहीं अल्लाह के नबी, हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ बैठते हैं, हम नाते पढ़ेंगे। नहीं, काम नहीं छोड़ा आपने, बीमारी, सेहत, परेशानी। और जब मुकाम जर्फ जो मदीना से 3 मील के फासले पर है वहाँ पहुँचे तो पता चला कि अल्लाह के नबी की हालत बड़ी नाजुक है। वहाँ से लश्कर को वापस आना पड़ा, और तकरीबन 13 या 14 दिन आप नज़ा की सख्तियों में रहे, और 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को जोहर से कबल 63 यानी 63 ईयर्स की उम्र में आपकी जान इस जिस्म से निकल कर ऊपर चली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस दिन बीबी फातिमा यतीम हो गई, और आयशा 17-18 साल की उम्र में बेवा हो गई, और ये कमज़ोर सी बच्चियाँ बाद में इस्लाम के लिए कितना बड़ा ख़जाना साबित हुई। हकीकत यह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अहाता करना हमारे बस में ही नहीं। ये तो एक गहरा समंदर है जिसमें पांव डाल दो तो इंसान अंदर से अंदर चलता जाता है। लेकिन बात यह है कि सच्ची मोहब्बत हो। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह के नबी ने इतनी कुर्बानियों से जो दीन दिया, हम आज इसको अपनी गफलतों से ज़ाया ना कर दें। आज हमारी औलादों का क्या हाल है? आज हमारी नस्लों के जहन कहाँ हैं? कल की जंगें तो सरहदों पे आती थी, आज हमारे इस बच्चों की जहन नहीं मसख हो चुके? आज इस्लाम पे कितने हमले हैं? आज पर्दे पे कितने हमले हैं? आज जिहाद का लफ्ज़ क्यों किताबों से निकल गया? अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हम इस दीन की हिफाजत करें और इसी मकसद में हमारी ज़िंदगियाँ चली जाएं। अल्लाह ताला अपने नबी को अपनी रहमतों में रखे। आइए मुख्तसर सी दुआ कर लेते हैं और इस दुआ में ये दुआ ज़रूर शामिल करेंगे कि अल्लाह हमें नबी सल्लम की ज़ात से जितना प्यार है उतना उनकी बात से भी प्यार हो, क्योंकि आपकी ज़ात से प्यार करने वाले सिर्फ़ ज़ात से प्यार करके जन्नत में नहीं जाएंगे जबकि बात से प्यार ना करें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व अस्हाबिही बि रहमतिका या अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या मालिक, या कुद्दूस, या अल्लाह, हम तुझे तेरे प्यारे नामों के वास्ते से पुकारते हैं। या अल्लाह, तेरी सिफात के वसीले से पुकारते हैं। या अल्लाह, हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह, जो कहने सुनने में गलती उसको माफ़ कर दे। या अल्लाह, अपने नबी पे करोड़ों दुरूद व सलाम पेश कर। या अल्लाह, अपने नबी को इन तमाम कुर्बानियों और मेहनतों का बेहतरीन बदला अता फरमा। या अल्लाह, हम उम्मती हैं उनके। या अल्लाह, ये तेरी तरफ से एक शान है जो तूने हमें दे दी। या अल्लाह, इसको कायम रखना। या अल्लाह, ऐसा ना हो कि हम तेरे नबी के दीन से इतने दूर हो जाएं कि क़्यामत के दिन वो हमें पहचानने से इनकार कर दें। या अल्लाह, ऐसा ना हो कि हम तो उनकी सिफारिश की उम्मीद में खड़े हों और वो हमारी शिकायत करने लग जाएं। या अल्लाह, ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी क़्यामत के दिन हमें पहचान ही ना पाए। या अल्लाह, हमारे तमाम साथियों पर अपनी रहमत फरमा। या अल्लाह, जहाँ जहाँ हमारे साथियों ने इस बात को सुना, ख़ास तौर पे नौशीन के घर में हमारी जो सिस्टर्स इस बात को सुन रही हैं, या अल्लाह, उन सब के दिलों की नेक तमन्नाएं पूरी फरमा। सब के सुनने का अजर भी इनको अता फरमा। या अल्लाह, इनकी इस प्रोग्राम में बरकत दे। या अल्लाह, हम सब को इसी तरह कुरान के लिए जमा कर, हम कुछ सीखें, कुछ सिखाएं। या अल्लाह, जहाँ भी जो परेशान है उसकी परेशानी दूर फरमा, बीमारों की बीमारी दूर कर दे, जो औलाद की तरफ से परेशान है उनकी परेशानी दूर फरमा, जो माँ बाप की तरफ से परेशान है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह, सब साथी जो दीन के कामों में लगे हुए हैं, या अल्लाह, उनकी कोशिशों को कबूल फरमा, बरकत दे। या अल्लाह, आज हमारा ऑनलाइन पे ये जो नया रूम खुला, या अल्लाह, इसको क़यामत तक कायम रखना। या अल्लाह, यहाँ से हमेशा हक बात हो, हमारी कमी बेशियों को दूर कर दे। हमारे माँ बाप पर रहम फरमा, जो दुनिया से चले गए उनकी कब्रों को नूर से भर दे। जो चिंता है उनको आफियत दे। हमारे भाई बहनों की परेशानियाँ, मसले मसाइल, दुख दर्द दूर फरमा। और या अल्लाह, हमें एक गम लगा दे कि हमारा आखरत में क्या होगा, हमें अपनी कब्र की रात कभी ना भूले। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व अस्हाबिही अजमाईन बि रहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम जी।